जो इस दुनिया की जिंदगी में अपने आप को दीवदार बनाएगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अमन चैन सुकून और राहत देंगे और अल्लाह उनकी जान में माल में औलाद में सब में बरकत अदा करे। थोड़ी चीजें होगी लेकिन इसमें बड़ी खैर और बड़ी बरकत वाली जिंदगी होगी। खाना थोड़ा होगा सब कुछ काफी हो जाएगा, माल थोड़ा होगा इसमें सबकी जरूरतें अल्लाह पूरी करेगा, दीन होगा तो। और जो इस दुनिया में अपने आप को दीनदार नहीं बनाएगा, अल्लाह ताला की दी हुई जान माल से वो दुनियादार बनने की कोशिश करेगा तो दुनिया उसके हाथ में आएगी नहीं, क्योंकि वो मुकद्दर के साथ है। और चूंकि दुनिया के पीछा पड़ा रहेगा इस वजह से दुनियादार कहलाएगा, वो अपने दीन को जाहिर करेगा, वो इबादतें छोड़ देगा दुनिया की वजह से, वो हज नहीं करेगा दुनिया की वजह से, वो हुजूर के मुबारक तरीकों पर नहीं चलेगा दुनिया की वजह से, लोग क्या कहेंगे। ये दुनिया में भी नाकाम होगा, दुनिया में जलील होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दीनदार बनने की जिसने भी दुनिया में कोशिश की वो दुनिया में जलील होंगे और मरने के बाद भी नुकसान में रहेंगे। और अल्लाह ताला ने एक बात का अगर फैसला किया है कि जो भी दुनिया में आएगा आया है वो एक दिन यहाँ से चला जाएगा, उसको यहाँ हमेशा रहना नहीं है। चाहे अपनी दुनिया कितनी अच्छी बना रहे हो, एक दिन उसको उस दुनिया को छोड़कर कब्र में जाना ही जाना है। इसलिए समझदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बताया ये जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करे, यानी अपने आप को दीनदार बना ले। हर दीनदार बनने वाला आदमी अपनी आखिरत की तैयारी करने वाला है और आदमी दीनदार उस वक्त बनेगा जब सबसे पहले उसका ईमान बने। दीनदार बनने के लिए चार अमाल हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को करने को कहा, आपने खुद भी किया, अपनी औरतों से करवाया और अपने तमाम मानने वालों को करवाया। उसमें पहली बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाना, अपने दिल के अंदर अल्लाह की जात का यकीन बिठाने के लिए दूसरों को बोलना कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह सब कुछ करने वाला है, जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ताला के इरादे से होगा और अल्लाह ताला करने में किसी का मोहताज नहीं है। ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा करके बताया, आदम अलैहि सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करके बताया, औवा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा करके बताया। इंसानों को भी पैदा करने में अल्लाह ताला मर्द औरत का मोहताज नहीं, और आसमान को बगैर आसमान में से अल्लाह ने बनाया, हर चीज को जिस चीज का वो इरादा करे उसके करने में बनाने में वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। आसमान से बारिश बरसाने में वो बादलों का मोहताज नहीं है, बगैर बादल के भी अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसा सकता है। और तमाम खजानों का मालिक वो है, हर चीज के खजानों का वो मालिक है। और दुनिया के जितने भी लोग हैं, दुनिया की सारी मखलूक वो मोहताज है। अल्लाह ताला चाहते तब तक मुर्गी अंडे देती और अल्लाह नहीं चाहता तो फिर वो बंद हो जाता। इसलिए मुर्गी अंडा देने के बाद आसमान की तरफ अपना मुंह करके फिर पुकारती है वो अपनी मखसूस आवाज में बोलती है, ये अंडा अल्लाह ने दिया है, आसमान की तरफ मुंह करके फिर वो बोलती है, ये मैंने नहीं दिया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दिया है। तो इसको बोलना, और इसलिए बोलना कि हमारे दिल में भी अपने असबाब का यकीन निकल जावे, शोहर नहीं करते अल्लाह करता है, शोहर कमा कर नहीं खिला रहा अल्लाह ताला खिलाते हैं, बच्चे कमा कर नहीं ला रहे अल्लाह ताला रोजी देता है तो लाते हैं। इस तरह हर चीज, हर किस्म की राहत अल्लाह के कब्जे में है, बीमारी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह देते हैं, गोलियों में कुछ नहीं, दवाई में। बहुत से लोग दवा खा के मर जाते हैं, उसी दवा से रिएक्शन आता है और ज्यादा बीमार होकर खत्म हो जाते हैं, और वही दवा दूसरा मरीज खाता है तो अच्छा हो जाता है। तो अल्लाह ताला के हुक्म में है, जो कुछ है वो अल्लाह अपने इरादे से और अपने अम्र से करता है, अम्र यानी हुक्म से करता है। एक घर में खाना पकता है एक हांडी में, एक बर्तन में, 10 आदमी खाते हैं, 7 को कुछ नहीं होता, 3 को दस्त हो जाते, पाखाने के चक्कर हो जाती है, यहाँ तक इनको दवाखाना में भर्ती करना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि खाने का पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन नहीं हुआ, अगर होता तो 10 को होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म हुआ। एक गिला पेट में जाने के बाद इनको पाखाने में बार बार ले जाएगा, अल्लाह का हुक्म हो गया। तो जो कुछ होता है अल्लाह करते हैं, और अल्लाह ताला करने में किसी का मोहताज नहीं है। इसको बोलने से आदमी दीनदार बनेगा, ये सबसे पहले दीन में ईमान है, और इसके साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए पैदाइश से लेकर कब्र में उतरने तक का तरीका लेकर आए हो, उसी तरीकों में कामयाबी है, उसी में इज्जत है, उसी में दुनिया और आखिरत की इज्जत है, सुर्ख रुई है। और जिसने नबी का तरीका छोड़ दिया वो दुनिया में ही जलील होगा, दुनिया में वो मकरूज होगा, कर्जदार हो जाएगा, दुनिया में इनके असबाब बिक जाएंगे जो नबी का तरीका छोड़ेगा, और जो नबी के तरीके पर बाकी रहेगा, बाप के तरीके में मयाना रवि है, कम से कम खर्चे में घर चलाना, ये नबी का तरीका है, कम से कम खर्चे का कपड़ा पहनना, कपड़ों में ज्यादा खर्च न हो, कम से कम खर्चे में मकान बनाना, ये नबी का तरीका है, कम से कम खर्चा निकाह में करना, अब जो है उसमें 2 खर्चे हैं सिर्फ निकाह में, एक मेहर देना जो लड़का देगा, लड़की के माँ बाप को 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है, जो तरीका नबी लेकर आए हैं उस निकाह में उस शादी में 1 नए पैसे का भी खर्चा लड़की वालों को नहीं है। दूसरा खर्चा जो सुन्नत है, पहला खर्चा वाजिब है, मेहर का अदा करना, देगा तो फायदा है, सवाब मिलेगा, और नहीं देगा तो गुनहगार होगा, मेहर नहीं दी कोई। और दूसरा खर्चा सुन्नत है, वो करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा, करेगा तो सुन्नत की बरकत उसके घर में आएगी, और वो वलीमा का खाना है। ये 2 खर्चे निकाह में है, इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, तबजीर है, वो तबजीर उलमा ने लिखा है कि तबजीर उसको कहते हैं कि जहाँ 1 पैसे का भी खर्च करने की जरूरत न हो वहां माल खर्च करने को तबजीर कहते हैं। और कलामे पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश्शयातीन, ये तबजीर करने वाले जो है वो शैतान के भाई है। तो नबी पाक रस्म के तरीके में कम खर्चे में जिंदगी गुजारना है, जिनका निकाह 2 खर्चों में हो जाए, मेहर अदा करें और वलीमा खिला रहे, इनको जमीन बेचनी नहीं पड़ेगी, इनको मकान बेचना नहीं पड़ेगा, इनको बुजुर्ग को खर्चा करना पड़ेगा नहीं। यहाँ तक कि भोले का भी कपड़ा जो है वो भी नया बनाने की जरूरत नहीं है, पहने हुए कपड़े में निकाह हो सकता है। मम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरे पास एक कुर्ता था जिससे अंसार की कई लड़कियों का निकाह हुआ, यानी मदीना मुनव्वरा में किसी लड़की का निकाह होता तो मम्मी जान आयशा के पास जाकर वो कुर्ता मुस्कान यादी पहनने के लिए दो तीन दिन के लिए, और उस कुर्ते में उसका निकाह हो जाता था, और एक कुर्ते में कई लड़कियों का निकाह हुआ। अभी इनको कोई खर्चा नहीं, इनको कर्जा करना नहीं पड़ेगा, इनको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी कि भाई लड़की जवान हो गई है अल्लाह के वास्ते कुछ दो, इनको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, जलील नहीं होंगे कि पहने हुए कपड़ों में निकाह हो जाएंगे। फिर खाने के बारे में कहा कि जिस घर में सिरका हो वो घर सालन से खाने नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में सिरका हो वो घर सालन से खाली नहीं है। आदमी को भूख मिटाने के लिए रोटी के साथ सिरका लगा दे, नमक लगा दे, खा ले तो पेट भर जाएगा, उसको सालन बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत पूरी हो जाएगी, बीमार भी नहीं होगी वो। इसी तरह मकान के बारे में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का बदतरीन माल वो है जो गाड़े मट्टी में खर्च हो, यानी तामीर में खर्च हो, मगर वो जो जरूरत के दर्जे का हो। अब तीन आदमी घर में रहने वाले हैं तो दो कमरे काफी है, दो कमरे काफी है, दो आदमियों तीन आदमियों के दरमियान में पूरा बंगला बनाना जरूरत की चीज नहीं है, फजूल खर्ची है, इसमें कर्जा होगा, इसमें लोगों का हक जाय होगा और कयामत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसको कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम नबी को ये मानते हैं कि सीधी सादी जिंदगी हो, इन चीजों में खर्च कम हो, सवारी में खर्चा कम हो, आदमी को इधर उधर आना जाना पड़ता है, सवारी की जरूरत है, ऐसी सवारी खरीदे जो कम से कम खर्चे में उसको अपनी जगह पर ले जाए। नया मोटरसाइकिल 50-60 हज़ार का अगर मिलता है वो दुकान पर, खेत पर, बाजार में, नौकरी की जगह पर ले जाता है, फिर 1.5 लाख का बुलेट लाने की जरूरत नहीं है, ये जो खर्ची है तबसी नहीं। अल्लाह के नबी शासन ने इसको पसंद नहीं करवाया। तो सीधा साधा मकान, सीधा साधा लिबास, सीधा साधा खाना, कम खर्चे का निकाह, सीधा साधा मकान, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसको कहते हैं कि हम नबी को मानते हैं, जिसमें नाचना गाना ना हो। दूसरा आम शासन के तरीके में हया शर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुनिया में नाच गान को खत्म करने के लिए आया हूँ, मिटाने के लिए आया हूँ। तो मुसलमान के घर के अंदर चाहे कितना भी बड़ा खुशी का मौका हो उस घर में नाचना गाना नहीं होगा, ये बेहयाई है, ये बेहयाई है, बेशर्मी है। और आपके तरीके में हया है, औरत की आवाज का भी पर्दा है, औरत के पूरे जिस्म का पर्दा है, ये अपने आप को छुपा ले, ये अपने महरम के अलावा किसी के सामने जाहिर ना हो, तो हया शर्म है। बातचीत पर हया हो, गंदी बात जुबान पर ना लाए, गाली मुसलमान दे नहीं सकता। जो आदमी नबी का उम्मती है, आशिक के रसूल है, उसके मुंह में कभी गाली आ ही नहीं सकती। ये तो नबी के दुश्मनों का तरीका है कि मुसलमान गाली बोले, लानत मलामत करना ये नबी का तरीका नहीं है। बद्दुआ करना अपने औलाद को, अपने शोहर को, अपने जानवर को, अपने पड़ोसियों को गालियां देना, ये नबी पाक ससम का तरीका नहीं, ये जहन्नमी लोगों का तरीका है। जब लोगों को कब्र में सुलाया जाएगा तो उनको जहन्नमी लोग बनाए जाएंगे, हर मुर्दे को जहन्नम दिखाएंगे इसकी कब्र में और जन्नत भी बताएंगे। उनकी दीनदारी की वजह से आप बेदीनी कैसे बताएंगे? अगर दीनदारी में मौत आई है, ईमान के साथ दुनिया से गए अल्लाह ताला को अपना रब बनाया, अपने शौल को अपने आप को रब नहीं बनाया, करने वाले अल्लाह है, ये यकीन लेकर कब्र में जो गया उसको पूछेंगे तुम्हारा रब कौन, कहीं के अल्लाह और रब। जिसने नमाज का एहतमाम किया, पांच मरतबा घर में मुसल्ले पर खड़ी हुई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कब्र में कहेगी मेरा रब अल्लाह है। जब पहला सवाल फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, ये जवाब देगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए ये कोई ना कोई नमाज पढ़ के दुनिया से गई होगी। जैसे अभी कोई मर जाओ, अभी जोहर की नमाज पढ़ के गई, मर जाए तो नमाज पढ़ के गया हो, फजर के बाद कोई मर गया वो फजर पढ़ी होगी, ईशा के बाद कोई दुनिया से चला गया, ईशा की नमाज पढ़ के गए होंगे। ईशा की कितनी रकात है? तकरीबन 17 रकातों में उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा होगा या सुना होगा, ईमान के पीछे सुना होगा, खुद ने पढ़ा तो पढ़ा होगा। इसको पूछेंगे तेरा रब कौन, तो कहेगा मेरा रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको नबी के बारे में सवाल होगा, तुम्हारे नबी कौन है, तो जिसने सीधा साधा लिबास में ना कम खर्चेगा, निकाह में कम खर्चा किया, हयात शर्म के साथ दुनिया में रहे, पर्दे का एहतमाम किया और रोजाना नमाज में अपने नबी को सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद, आखिर तक ये अपनी नमाज में पढ़ते गए, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, या ईशा के बाद, या फजर के बाद। मौत किसी भी नमाज के बाद आती है लोगों को, वरन कहेंगे मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पसंदीदा लिबास दुनिया में जिंदगी भर पहना, आपके तरीके वाला निकाह किया, आपके तरीके पर खाना पकाया खाया, आपके तरीके पर मकान बनाया और आपके तरीके पर आने आपके दीन पर जिंदगी गुजारी, वरन कहेंगे मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है, उल्मा ने लिखा है कि ये सवाल इबादत का, क्या क्या इबादत है दुनिया में की हुई, तो नमाज पढ़ी पांच वक्त की, रोजा रखा रमजान में, ज़कात अदा की मालदारी पर, और हज किया मालदारी की वजह से, तो फौरन कहेगी मेरा भी इस्लाम है। फिर इसको जहन्नम पहले बताएंगे, अब मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ, उसको जहन्नम बताएंगे और कहेंगे अल्लाह की नेक बंदी, दुनिया में तुमने 50-60 साल तक अपने आप को काबू में रखा और जुबान से गाली नहीं दी, कलमा पढ़ा, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, पर्दा किया, अब ये जहन्नम का दरवाजा है, ये तेरे लिए बंद कर दे, इसमें तू कभी नहीं जाएगी, और उसको दिखाएंगे तो जहन्नम एक दूसरे को गालियां देते होंगे, एक दूसरे को क्या देते हो, गालियां देते, कहेंगे तुम्हारी वजह से यहाँ जहन्नम में आना पड़ा। एक औरत अपनी बेटी को कहेगी कि मेरी बेटी, उसको लानत करेगी कि तेरी वजह से जहन्नम में आना पड़ा, तूने सीधा साधा लिबास नहीं पहना, तेरी वजह से मैंने नमाज छोड़ दी, तेरी फिक्र में, तेरी परेशी फिक्र में मैंने अल्लाह के अहकाम तोड़ दी, नबी का तरीका तोड़ दिया, ये तेरी वजह से जहन्नम में मुझे आना पड़ा, एक दूसरे को गालियां देंगे, ये मंजर इसको दिखाएंगे, फिर वो दरवाजा बंद कर देंगे और फिर कहेंगे कि अल्लाह की वलिया, अल्लाह की नेक बंदी, ऊपर देख ऊपर, वहां जन्नत होगी, वहां की हवाएं खुशबू अंदर आ जाएगी, कब्र में आएगी, वहां के महल एक सोने की एक चांदी की महल ऐसे होंगे, और एक दो महल नहीं हजारों महल होंगे, और एक महल के ऊपर 70,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते होंगे और वो इंतजार में होंगे सलाम करने के लिए, अल्लाह पीरन सलामन सलामा, कुरान में अल्लाह ने इसका मंजर खींचा है कि सलाम करने के लिए तो आजा, हम तेरी सलामती के लिए इंतजार में है, फिर वहाँ फल होंगे जो हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, वहाँ दूध की लहरें होगी, शहद की लहरें होगी और पाकीज़ा शराब की लहरें होगी, और वहाँ खिदमत करने वाले गिरमान होंगे, जो हमेशा बच्चे रहेंगे, ये इसको दिखाएंगे कि अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की देख बंदी, उन्होंने दुनिया में अपने आप को अल्लाह के अहकाम पर चलाया, जिंदा बनने की जिंदगी, नमाजों का एहतमाम किया, नबी के पास उनके तरीके पर चली। लोग फैशन की लानत थे, जहन्नमी बन रहे थे, उन्हें अपने नबी की बातों पर भरोसा किया, एतमाद किया और जन्नत की उम्मीद करते थे, गुनाहों से अपने आप को बचाया, बेहयाई से बचाया, नापाकी से बचाया, बेपरवाही से बचाया। अब इसके बदले में ये जन्नत तेरे लिए, इसके तू हमेशा रहेगी, ये मंजर कबर में अल्लाह ताला खोलेंगे दीनदारों के लिए। और जो दीन पर नहीं चलते इनके लिए उल्टा होगा, पहले जन्नत दिखाएंगे और कहेंगे अल्लाह के दुश्मन, अगर दुनिया में तूने 50-60 साल दीनदार बनकर जिंदगी गुजारी होती तो यहाँ तेरे जगह थी, लेकिन तूने शक किया, तू जिस हवा चली उस हवा में फंस गई, बेहयाई वाला माहौल है तो देहा बन गई, फैशन वाला माहौल है तो फैशन वाली हो गई, अल्लाह के नबी सब के तरीके पर एतमाद नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तूने बेहयाई की, बेपरदगी की, फजूल खर्चा किया तूने, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल की, अब ये दरवाजा तेरे लिए बंद हो जाए, इसमें नहीं जाएगी, और फिर जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे, ये अल्लाह के दुश्मन देख ली अजाब तेरे लिए, वहां से सांप और बिच्छू आकर उसको कब्र में लेते हैं। अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जिनको कब्र के अंदर सांप सर की तरफ से और पांव की तरफ से काटना शुरू करेंगे और काटते काटते इनको पेट में जमा हो जाएंगे और ये अजाब उनको कयामत तक होता रहेगा। और एक अजदा उन पर मुसल्लत होगा, कहेगा अरे अल्लाह के दुश्मन तूने फजर की नमाज छोड़ी तो सूरज निकलने तक तुझे मारू, तूने जोहर की नमाज छोड़ी तो असर तक, असर की नमाज छोड़ी तो गुरूब तक मारू, और तूने ईशा की नमाज छोड़ी तो सुबह तक मारू, और एक हाथ मारेगा वो तो मुर्गा 70 हाथ जमीन में चल जाएगा, फिर बार उसको निकालेगा फिर मारेगा और कयामत तक कब्र में अजाब उसको होता रहेगा। इसलिए मेरी बहने, अल्लाह ताला ने दुनिया में हम लोगों को जो भेजा है वो दीनदार बनने के लिए भेजा है। अब इसके लिए क्या करना, तो पहला काम मैंने आपको बताया कि ईमान की दावत दो लोगों, अल्लाह से होगा अल्लाह करते हैं, और इन अमलों की दावत दो, नमाज की दावत दो, अल्लाह के जिक्र की दावत दो, तरावे पाक की तिलावत की दावत दो, अपने घर में माहौल बनाओ, जब अजान हो जाए तो चार बहने अगर आपके घर में है तो चार जा नमाज बिछाओ, या अपनी छोटी बेटी से बिछवाओ इधर उधर चार जा नमाज बिछा दो, और चारों लड़कियों को बहुओं को जो भी हो उनको वजू करवाओ, चलो बेटा आपको अभी इस काम को रखो बाद में करेंगे पहले वजू बना दो। अब चार बहने आपके घर में जा नमाज पर खड़ी है, एक प्याम में कोई रुकू में कोई सजदे में है कोई सलाम फेंक रही है कोई दुआ मांग रही है, ये तुम्हारे घर में नमाज का माहौल हो गया। ऐसा माहौल रोजाना अपने घर में बनाओ ताकि हमारा घर का हर फर्ज नमाज पढ़ के दुनिया में जिंदगी गुजारे, जब भी मरे जब भी इसकी मौत आवे ये नमाज पढ़ के दुनिया से गया हुआ हो। ऐसा है कि रोजाना सूरह फातिहा पढ़ेगा वो, नमाज पढ़ रखा तो सूरह फातिहा पढ़ेगा, ये किसी दूसरे के फातिहा का मोहताज नहीं रहेगा, अपनी जिंदगी में रोजाना सूरह फातिहा पढ़ रहा है, ये रोजाना सलाम पढ़ रहा है, ये रोजाना दुरूद पढ़ रहा है, और ऐसा दुरूद पढ़ रहा है ऐसा सलाम पढ़ रहा है कि जिसको अल्लाह ताला ने मेराज में बदलाया। मेराज में जब आप सब तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फरिश्तों ने सलाम किया, वो सलाम हम रोजाना नमाज में पढ़े, ये मकबूल सलाम है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, दुनिया का हर मुसलमान ये सलाम पढ़ता है, दुनिया के सारे मुसलमान उर्दू जबान नहीं जानते, अब उर्दू की सलाम कोई भी पढ़ सकता, अगर पढ़ते तो उर्दू जबान बोलने वाले पढ़ते हैं, लेकिन ये सलाम ऐसा है जिसको अल्लाह ने मेराज की रात में पढ़ा है, वो दुनिया के सारे मुसलमान वो सलाम पढ़ते हैं, दुनिया का हर मुसलमान नमाज अरबी जबान में पढ़ता है, ये सलाम मकबूल है, ये रद्द नहीं होगी, और ये सूरह फातिहा मकबूल है, इसके बगैर नमाज नहीं होती, बगैर सूरह फातिहा की नमाज ही कोई भूल जाए तो उसको सजदा सहू करना पड़ेगा। ऐसा फातिहा रोजाना ही पढ़ना है कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, इसलिए पढ़ेगा तो इसको किसी की मोहताज ही नहीं रहेगी, अगर बस पढ़ेंगे फातिहा करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन जो लोग दुनिया में बेनमाजी है रोजाना फातिहा नहीं पढ़ते रोजाना सलाम नहीं पढ़ते नमाज में अपनी पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुकाते कि उनको क्या ना होगा कुछ नहीं, ये तो महरूम दुनिया से जाएंगे। हदीस में आता है ये कयामत के मैदान में अल्लाह के नजरों में शाद की तजल्ली फरमाएंगे, जैसे सारे लोग अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाएंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते उनका वजन तख्ते जैसा हो जाएगा, लकड़े जैसा हो जाएगा, पंखे जैसा, वो झुक नहीं पाएंगे सलाम के हवाले। वो लोग पहले अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा मैदान कयामत में जलील बेनमाजी होंगे, सबसे ज्यादा इनकी इज्जत जाएगी, सबसे ज्यादा पशेमान और शर्मिंदा होंगे। इसलिए महनों से दरख्वास्त है अपने घर में नमाज का माहौल बनाएं, फिर कलाम पाक की तिलावत का माहौल बनाएं, सुबह शाम तीसरा कलमा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़े सौ सौ मरतबा, इसका माहौल अपने घर में बनाएं। एक दूसरे को पूछे कि नमाज हो गई, तस्बीह हो गई, तिलावत हो गई, ताकि माहौल बने। जैसे खाना हुआ कि नहीं, वो पूछते हैं ना खादू कि नहीं, खाना खाया तो इसका एक दूसरे को याद दहानी करते हैं। कोई भूल जाता है तो खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं खाना खाना तेल में, उसको पूरे खाना खाया तो बोले नहीं, उसको फिर खिलाया जाता है। तो नमाज है, जिक्र है, तिलावत की याद दहानी करे, और ये चीज़ें कैसे करना वो सीखने के लिए अपने घर में तालीम करें। तीसरा काम तालीम करना अपने घर में, घर में रोजाना फजाइल आमाल की किताबें उसको पढ़े, सरकार को पढ़े। इसमें नींद के नींददार बनने के जितनी भी क्रम की आयतें हैं हदीस है उसमें लिखी गई है, इसके अलावा की बातें नहीं है इसमें, इसमें दीनदार बनने ही की बातें हैं। इसके पढ़ने से हमारे दिल में शौक पैदा होगा कि रिश्वा करने का क्या फायदा है, एक बार सुवर्णा कहने का जन्नत में क्या नमान है, ये इसमें लिखा है। कलाम पाक की एक आयत का सीखने का क्या फायदा है, घर में सलाम करके दाखिल होने का क्या फायदा है, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखने का क्या फायदा है, अपनी बहू को बेटी के बराबर रखना किसका क्या फायदा है, अपनी सास को माँ के बराबर शुमार करना और माँ जैसी इसको इज्जत देने का क्या फायदा है, वो इसमें लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि हमारे घर में दीन का माहौल जिंदा होगा। और जब तालीम तुम्हारे घर में पूरी होगी 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद, तो हदीस में आता है एक फरिश्ता ऐलान करेगा, अरे मजलिस वालों, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत कर दी और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। तो हमारे घर से जो भी आदमी दुनिया अपनी पूरी करके जाएगा उसकी मगफिरत भी हो गई होगी और उसकी सारी बुराइयां नेकियों में बदल गई होगी। इसके अमलनामे में एक भी बुराई और गुनाह नहीं होगा। इस साल में दुनिया से जाएगा उसकी कब्र जन्नत का भागी होगा, जहन्नम का घड़ा नहीं बनेगा। इसलिए अपने घर में तालीम करें। और चौथा काम जो है वो अपने घर में खिदमत करें, सास को खाना दें, अपनी बहू को इत्मीनान से रोटी खाने दें, अपने घर में बूढ़े आदमी का इकराम करें, आसपास पड़ोसों में कोई गरीब है जिनको खाना खिलाएं। और ये ऐसे अमाल हैं जिससे हमारे घर की तंगियां दूर हो जाएगी, हमारे घर के फकर फाका दूर हो जाएंगे, दोस्तों में बरकत होगी। अगर मियां बीवी में सुलह है, सास बहू में सुलह है, ऐसा लगना चाहिए कि साहब ये माँ बेटी है, सास बहू भी है, ऐसा हमारे घर में एक दूसरे के साथ बात हो। घर में लड़की से बहू से कोई बात टूट जाए, कोई चीज टूट जाए, तो फौरन उसको कहे तुझे लगा तो नहीं, खून तो नहीं निकला, कोई बात तो फिर दूसरी आ जाएगी, तुझे तो लगा नहीं है, इससे इसका दिल खुश हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए इसके दिल में जगह हो जाएगी। तो हमारी जुबान को कंट्रोल में रखे। लेकिन की कीमत अपनी बहू से ज्यादा नहीं है। हदीस में आता है कि मुसलमान की कीमत अजमत अल्लाह के नजदीक बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। इसी मुसलमान का दिल तोड़ देना काबे को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। एक मरतबा हुजूर हसन बैतुल्लाह के साये में बैठे थे, खड़े हो गए और इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है, अरे बैतुल्लाह तू जरूर मुअज्जिज़ है, काबिले एहतराम है, काबिले इकराम है, लेकिन ईमान वाला मर्द हो या औरत हो तेरे से ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। इतना इज्जत और अजमत वाला है कि जमीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक अल्लाह ताला बैतुल्लाह को आसमान में नहीं उठाएंगे। एक आदमी की वजह से बैतुल्लाह अपनी जगह बाकी रहेगा। जब जमीन पर एक आदमी भी अल्लाह वाला नहीं रहा, ईमान वाला और मर्द औरत न रहा, तो अल्लाह जब जलालू बैतुल्लाह को आसमान में उठाएंगे और फिर जमीन आसमान को तोड़ देंगे। कयामत जो आएगी वो काफिर और मुशरिकों पर आएगी, मुसलमानों पर नहीं आएगी। अल्लाह ताला जमीन आसमान को जो तोड़ेंगे वो मुसलमानों पर नहीं तोड़ेंगे, काफिर और मुशरिकों पर तोड़ेंगे। वहां तक अल्लाह ताला दुनिया को बाकी रखेंगे। इतनी इज्जत अल्लाह के नजदीक एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान की औरत की है, इसलिए अपनी बहू को घटिया न समझे, अपनी बहू को इज्जत दे, अपनी सास को बुरा न समझे, इसको इज्जत दे, चाहे वो गालियां बोलती हो, वो कुछ भी करे, वो हमने देखे, हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इज्जत और अजमत करने को कहा है। तो चौथा काम यह है कि हम दूसरों की अजमत और इज्जत करें, इससे हमारे अंदर दीन आएगा और हमारी नेकियां कयामत के दिन बाकी रहेगी। अब ये चार काम आप पहले अपने यहाँ घर पर रहकर करने का इरादा करें और अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में ये चार काम सीखने के लिए भेजें, इसलिए कि 24 घंटे दुनिया की फिक्र में होते हो, कारोबार के धंधे की फिक्र में रहते हो। तो ये अपने धंधे कारोबार में ड्राइवर है, कोई आदमी ऑफिस में करता है, कोई आदमी तिजारत कर रहा है, कोई आदमी गोश्त बेच रहा है, कोई आदमी खेती कर रहा है, वहां ये चार काम कैसे करेगा? अकेला गाड़ी चला रहा, कहाँ दावत देगा, कहाँ तालीम करेगा? इसलिए इनको 4 महीने अल्लाह के रास्ते में भेजो, ये मस्जिद में रहेगा और ये चार काम वहां पर इत्मीनान के साथ करेगा, नमाजें 5 वक्त पढ़ेगा, तालीम रोजाना 4 घंटे करेगा, वहां पर वहां खाना पकाएगा, अपना बिस्तर बिछाएगा, उठाएगा, खिदमत करेगा, अपने साथियों की खिदमत करेगा, अपने साथियों का इकराम इज्जत करेगा वो, और वहां जहां जाएगा उस गांव के लोगों का इकराम करेगा, वहां जिक्र तिलावत करेगा, दुआएं मांगेगा। इसलिए इसको ये 4 काम सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में भेजो। आपका इज्तिमा होने वाला है संजेली में जनवरी महीने के अंदर, तो वहां से अपने घर से हर घर से एक आदमी को 4 महीने आपको देना है, तो इसको भी नाम दे और वो आ जाए, इसके बाद दूसरे को भेजना। इज्तिमा खत्म होने के बाद काम खत्म नहीं होता, इज्तिमा पूरा होने के बाद काम शुरू होता है और ये काम कयामत तक चलाना है। ये काम हमारे घर से जब तक हमारी नस्ल दुनिया में रहेगी, हमारे घर से ये काम दुनिया में होता रहेगा। जैसे हुजूर सासन के घर से काम चालू हुआ, सहाबे के घर से चालू हुआ, अभी 1400 साल से ऊपर वक्त हो गया, दुनिया के हर कोने कोने में हर घर और कच्चे पक्के मकान में ये काम हो रहा है, जा रहा है। उनकी फिक्रों पर, उनकी कुर्बानी पर ये हुआ, अब हमारी फिक्रों पर, हमारी कुर्बानी पर भी ये हुआ। इसके साथ साथ 3 दिन के लिए आप अपने मेहनत को तैयार करें, इंशाल्लाह शनिवार को जमात जाएगी मसूरा 3 दिन के लिए, माशाल्लाह 2 जमातें गई है, अब और भी माशाल्लाह बहने जो है मौजूद है, वो अपने नाम लिखवावे और अपने घर वालों को तैयार करे, शनिवार के दिन इंशाल्लाह 3 दिन की जमातें जाएगी और पर्चे में अपने नाम लिखकर इन तमाम अमलों को करने का इरादा करें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस जिंदगी को जिंदा बनाने की टीम पर चलने के अलावा मुझे आपको तौफीक नसीब करे। Thank you.